हर विशेष व्यक्ति का कुछ धार्मिक जीवन होता है, कुछ समाजिक जीवन होता है और कुछ राजनीतिक। इतिहास दे तिने पक्ष भगत कबीर दे मिलते हैं। धार्मिक तौर पर सिरमौर मनुख उसके बाकी दे जीवन के पहलू बेदाग रहते हैं। वह मनुख दागी आंदा समाजिक तल से राजनीतिक तल से जिसके को धार्मिक उचता नहीं है, धार्मिक जीवन नहीं है। इस वास्ते भगत कबीर जी का समाजिक जीवन अत्यंत पवित्र महान। और भगत कबीर जी ने राजनीतिक विचार भी जो संसार नु दिते पवित्रता नाल भरे रहे और निर्मलता दी रोशनी वंडन वाले। आप दे मां बाप जिथे आप तो सदके जांदे ने, आप दी पत्नी आज्ञाकार है और पिता पुत्र सहमत होके चलन वाले ने। परिवारिक जिंदगी अत्यंत महान है और ये महापुरुष दी एक खूबी आती है कि मैं सारे संसार नाल बना के रखनी है, लिहाजा उस सारे संसार विच मेरा परिवार भी आंदा है तो मैं परिवार नाल भी बना के जो है रखनी। कबीर दे जीवन दे ये सारे पहलू बेदाग ने, निर्माणता दी आप मूर्ति ने। कहिंदे ने एक दफा ईरखालुआं ने आप दी बेइज्जती कराण लई, आप दी हेठी कराण लई आले दुआले ऐसे पत्र भेज दिते कि आने वाली पूर्णमासी दे दिन कबीर दे घर ब्रह्म बोझ होवेगा। कबीर ने एक एक मोर सोने दी दक्षिणा भी देनी है और वस्त्र भी देने ने। लोड़वंद साधु संत होर कबीर दे घर मेले दे रूप दे जमा होए, पर देह नेत ऐसे लोग भी आए जिन्होंने उस दिन ब्रह्म भोज का सारा निजाम खुद चलाया, सारा इंतजाम खुद कीता, जो कबीर दी आर्थिक समर्था तो परे दी गल सी। ते जद चारों पासे धन कबीर दी गुंजारा उठिया तां आपने आख्या ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो किच हर किया भयो कबीर कबीर। एक दिन सिकंदर लोधी दी बेगम गंगा दे तट ते हिंदू यात्रुओं नूं वेखण लई आई। बस्त्र बड़े कीमती पहने हुए, हीरे मोतियां नाल जड़त उसका बुरका और तरह तरह के जरी दे नाल सिले हुए उसका पहरावा ते बस्त्र। कबीर दे चेले कबीर दे शिष्य वेख के दंग रह गए। कबीर जी दे डेरे विच एक पनहारी सी जो सारा दिन आए गए यात्रुओं नूं जल पिलांदी सी। बड़ी श्रद्धा दे नाल पानी पिलांदियां पिलांदियां सतनाम दा ओ रटन करदी रहिंदी सी। कबीर पंथियां दा गुरमंत्र सतनाम है। पानी पिलांदियां पिलांदियां लोकां दे कन्नां विच ओ रब दी बाणी भी पाई जांदी सी। ए इस तरह दी पनहारी, ए इस तरह दा पानी पिलाण वाली, मूँह दे राहीं पानी पिलाई जांदी सी, कन्नां दे राहीं बाणी पिलाई जांदी सी। लेकिन उसके तन के बस्त्र फटे और वह लावारिस मुफलिस सी। कबीर दे चेले कबीर जी पास आके गिला करते ने, भगत जी यह जो पनहारी है सारा दिन सतनाम का रटन करती है, लोगों की शरीरक प्यास बुझाती है तो लोगों को मानसिक शांति मिल सके सतनाम की ध्वनि उन्होंने कन्नों में पाती है, लेकिन अत्यंत मुफलिस है, गरीब है, तन दे बस्त्र भी फटे हुए ने। लेकिन सिकंदर लोधी की बेगम नूं असी अज देखिया है गंगा दे तट ते, उन्हें मखमली लिबास पहने है और हीरे मोती पन्निया नाल जड़त। क्या ये रब अन्याय नहीं करता कि रब दा चिंतन करने वाले दुखी ते रब तो बेमुख होके इस तरह की ऐश्वर जिंदगी बतीत करते हैं। कबीर ने उत्थे जड़े बोल अपने उच्चारण किए ने जो बकायदा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के दर्ज ने। कबीर हैंगे बाहन सघन घन छत्रपति की नार, तासो पटंतर ना पुजे हर जन की पनेहार। ये ठीक है कि सिकंदर लोधी दी बेगम ने बड़े कीमती वस्त्र पहने ने और वो हीरे मोतिया नाल जड़क ने, लेकिन वो वस्त्र इस पनहारी का मुकाबला नहीं कर सकते। जो हरी दे जना नू पानी पिलांदी है, सारा दिन सेवा करदी है संत जना दी, इहदे कपड़े महान ने, सिकंदर लोधी दी बेगम दे कपड़े तुच्छ ने। चेले कहिंदे ने इसने ते खद्दर दे कपड़े पहने ने, ओह भी फटे हुए, ते उस बेगम ने मखमल दा लिबास पहने है, ओह भी हीरे मोतियां नाल जड़त, ते आप उस बस्तरां नू तुच्छ कहिंदे हो, इसनू महान कहिंदे हो। तो कबीर कहिंदे ने मेरे कोल कारण जाणो मैं ऐसा क्यों आख्या। कबीर निरपनारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मांग, ओ मांग सवारे विखे को ए सिमरे हरि नाम। इस दे फटे पुराने कपड़े प्रभु दे चिंतन विच इसनू लीन रखते ने, निरंकार विच इसनू लीन रखते ने, जबकि उसका मखमली लिबास उन्हू संसार विच लीन रखता है। तो मैं ते उस वेशभूषा की ही उपमा करांगा जिहड़ी वेशभूषा मनुख नू निरंकार विच लीन करे। गुरु नानक देव जी महाराज का भी ऐसा कहना है, बाबा होर पहनण खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ओ पहनना जिहदे च बंदा संसार विच ही गर्क हो जाए, ते संसार दीआं नज़रां दा ही एक पात्र बन के रह जाए। साहिब कहिंदे ने ऐसा ते मन विच खुआरी नू जन्म देंदा है, तन विच रोगां नू जन्म देंदा है। अज तक ते वैर और हिकमत यह कहिंदी आई है कि आहारक रोग होंदे ने, विवहारिक रोग होंदे ने, कर्म रोग होंदे ने। प्रथम रोग हो जो खाण पीण दी बदपरेजी नाल पैदा होंदे ने, पर गुरु नानक देव जी महाराज का कहना है बदपरेजी सिर्फ खाण पीण दी नहीं आउंदी, बदपरेजी पहनण दी भी आउंदी। इसका भी मन दे उत्ते अपना प्रभाव है, और मन की चंचलता जिन्हां पहरावियां नाल वधे, मन की चंचलता शरीर के तल पर रोगों जन्म देगी, बीमारियों नू जन्म देगी। इस वास्ते आपने बुलंद बांग आख्या है, बाबा होर पहनण खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। कबीर निरपनारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान, ओ मांग सवारे विखे को ओ सिमरे हरि नाम। कबीर की बाणी विच धार्मिक उपदेश बड़े फिलसफाना ढंग दे नाल दर्ज है। आप दे सलोक ने, छंद ने, शब्द ने, हर राग विच ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच भगत बाणी विच सब तो ज़्यादा बाणी भगत कबीर दी है, और जिथे जिथे भी भगत बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच आरंभ होंदी है, करीबन करीबन सब तो प्रथम श्री कबीर जी महाराज दे ही शब्द आउंदे ने, और आप दे शब्दां ने जिंदगी दे हर पहलू दे उत्ते बड़े सोहने ढंग नाल रोशनी पाई है। अध्यात्मक चिंतन ते धार्मिक मूल ज्ञान आप एक श्लोक विच बड़े सोहने ढंग नाल देंदे ने, कबीर ऐसा कोई न जन्मे हो, अपने घर लावे आग, पांचों लड़का जार के रहे राम लिव लाग। कबीर जी का ऐसा कहना कि चूंकि असी दो शरीर रखते हैं, एक स्थूल एक सूक्ष्म, एक जो दिखाई देता है एक अदृश्य। ये जिहड़ा शरीर दिखाई देता है इसनू आख्या जाता है प्रगट चित्र, ते जिहड़ा शरीर नहीं दिखाई देता उसनू आख्या जाता चित्र गुपत, गुपत चित्र, वो चित्र जो नहीं दिखाई देता। बंदा दूसरे का तन वेख सकता है, बंदा दूसरे का मन नहीं वेख सकता, लेकिन मन की अपनी होंद है, और किसी हद तक देखा जाए तो तन की बुनियाद है। तो मनुख का असली स्वरूप जो है उस दे विचार ने, उसका मन है, पर यह इन अखा नाल नहीं दिखाई देता। तो हर वक्त इस तरह के दो रूप मनुख के अक्सर बने रहते हैं। कई दफा तन के तल के उत्ते मनुख शरीफ प्रगट होता है, लेकिन मन के तल से वह शरीफ नहीं आता है। कई दफा तन के तल के उत्ते बहुत भोला दिखाई देता है, लेकिन मन के तल के उत्ते वह बहुत चलाक आता है, तो चलाकियां नहीं दिखाई देंदियां। कई दफा तन के तल के उत्ते बहुत वड्डा दानी दिखाई देता है, पर मन के तल के उत्ते बहुत बेईमान होता है। कई दफा तन के तल के उत्ते बहुत सियाणा दिखाई देता है, पर मन के तल के उत्ते अक्सर देखा जाता है वह मूर्ख होता है, कुबड़ होता है। और ऐसा देखा गया प्रगट चित्र ते चित्र गुपत दा आपस दे तालमेल नहीं बैठता। प्रगट चित्र कुछ होर दिशा की तरफ गमन करता है, ते चित्र गुपत किसी होर दिशा की तरफ। धर्म की साधना दरअसल चित्र गुपत नूं सुंदर बनाने लई है, लेकिन ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਖੜਿਆ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਤਨੇ ਸੌਂਦਰੇ ਪ੍ਰਸਾਧਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਤਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤਨ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ, ਤਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਮਨ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਮਨ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹਕੀਕੀ ਮੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਜਦ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਗਟ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਮਨ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਤਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਅਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ 'ਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਨ ਸਵਾਰੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਵਾਰੇ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਤਨ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ 'ਚ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗਰੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੂਲ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਔਲਾਦ 'ਤੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪੈੜੇ। ਸਰੀਰਕ ਔਲਾਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈੜੀ ਨਿਕਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਪੰਜ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਪੈੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਕਲੰਕਿਤ ਹੈ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮਨ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਭੈੜੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਹ ਧੀ ਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਅਪਜਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨੇਕ ਪੁੱਤਰ ਕੁੱਲ ਦਾ ਕਲੰਕ ਧੋ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਫਰਮਾਨ, ਅਪਜਸੰ ਮਿਟੰਤ ਸਤ ਪੁੱਤਰੇ ਸਿਮਰ ਤਬ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰਮੰਤਰਣੇ ਗਾਥਾ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਪਜਸ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਤਵਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੱਸਮੁੱਖ, ਖੁਸ਼ਪੋਸ਼, ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਖੁਸ਼ ਇਖਲਾਕ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਅਪਜਸ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਇੱਕ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਮਨ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਮਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਮ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, ਮਨ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ, या लोभ होवेगा या मोह होवेगा या अहंकार होवेगा, इस तों इलावा होर कुछ नहीं है। दिन भर मनुख की मानसिक चितवनी जिहड़ी है, मानसिक चिंतन जिहड़ा है, उहदे च इह पंज पुत्र ने। जैसे आम है बंदा बार बार दूर जाके प्रदेश जाके अपने बच्चों नूं याद करता रहिंदा है, अपनी औलाद नूं याद करता रहिंदा है, बस मन भी अपने इन्हां पंजां जणे होयां पुत्रियां नूं ही याद करता रहिंदा है और उसकी चितवनी विच रहिंदा है। धार्मिक साधना जिहड़ी है वह इस ते खड़ी है। भगत कबीर जी महाराज के कथन अनुसार, कबीर ऐसा कोई न जन्मे हो अपने घर लावे आग। हुण ऐसा केड़ा माई का लाल जमया है जो अपने घर नूं आप अग लावे। अज तक ऐसा होया है कि मनुख दूजियां दे घर नूं अग ला के खुश होंदा रहा है, पर कबीर कहिंदे ने भगत दी सोचनी ते दृष्टि कुछ होर है, ये ते अपने घर नूं ही अग ला के खुश होंदा है। ते अपना घर केड़ा है, तृष्णा छान भरी धर ऊपर दुरमत भांडा फूटा। मन जिस जोगी दे च रहिंदा है वह तृष्णा की जोगी है, तो उहदे च दुरमत भैड़ी मत का एक घड़ा पिया है, भांडा पिया है, तो जिहदे च गंदा पानी मन पीता रहिंदा है। कबीर कहिंदे ने ऐसा हुण केड़ा माई का लाल है जिहड़ा इस तृष्णा की झुग्गी नूं अग लावे, झोंपड़ी नूं अग लावे। जिस घर दे च मन रहिंदा है इहनूं अग लावे, तो मन सूक्ष्म है, मन अदृश्य है, तो यह अग्नि भी अदृश्य है जिहदे नाल मन दे घर नूं साड़ना है, ते मन दे पुत्रां नूं साड़ना है। सिर्फ घर नूं ही नहीं साड़ना, औलाद नूं भी साड़ना है। कबीर ऐसा कोई ना जन्मयो अपने घर लावे आग, पांचों लड़का जार के रहे राम लेवला। पंजां ही पुत्रां नूं साड़ के राम दी धुनी दे चलीन रवे, ऐसा केड़ा माई का लाल। तो एक ते प्रगट अग्नि है जिहड़ी बार साड़दी है, बार जलाण दे काम आउंदी है। मनुख जद ईर्षा नाल भरदा है, मनुख जद दुश्मनी दे नाल भरदा है, मनुख जद बदले दी भावना नाल भरदा है, ते दूजे नूं साड़न दा चित करदा है। पर जद मनुख दया नाल भरदा है, जद मनुख संतोख नाल भरदा है, जद मनुख ज्ञान नाल भरदा है, जद मनुख विचार नाल भरदा है, ते उहदा चित करदा है हुण अपने उस घर नूं साड़ां जिहदे च मन रहिंदा है, उस औलाद नूं साड़ा जिसने बेचैन कर रखे है, परेशान कर रखे है। एक अग लगेगी बार ओ बदले दी भावना वस होके, अहंकार वस होके, पर एक अग पैदा होवेगी दया वस होके, संतोख वस होके। उस अग्नि नूं गुरबाणी ने ब्रह्म अग्न आख्या, कबीर ने भी उसनों ब्रह्म अग्नि आख्या। ब्रह्म अग्न सहजे पर जाली एके चोट सिधाया। ब्रह्म अग्नि मेरे अंदर पैदा हो गई है, ते ब्रह्म अग्नि किवें पैदा होवे? बाहर जिहड़ी अग है वह माचिस की तीली असी रगड़दे हां पैदा होंदी है। प्राचीन समय च दो पत्थरां नूं रगड़ के अग पैदा की जाती सी, या दो लकड़ां नूं रगड़ के भी प्राचीन समय च अग्न पैदा की जाती सी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਜਪ ਤਪ, ਤਪ ਤਪਸ਼, ਤਪ ਅਗਨੀ। ਕਿਸ ਦੀ ਅਗਨੀ? ਜਪ ਦੀ ਅਗਨੀ, ਜਪ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਜਪ ਦਾ ਸੇਕ, ਜਪ ਦੀ ਅੱਗ। ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, जद कोई मनुख अल्लाह अल्लाह का चिंतन करता है, तो ये दरअसल संसार ते निरंकार का आपस दे छूण है। जद कोई ऐसा रटन करता है तो मन का परमात्मा दे नेड़े आवना है। ये जिहड़ी अग्न पैदा होंदी है उन्हूं कहिंदे ने ब्रह्म अग्नि, इनू योगियां ने योगा अग्न भी आख्या। ये जप तो पैदा होंदी है, इस वास्ते धार्मिक दुनिया के जप तप कट्ठा शब्द बन गया, तप सोज, तप सेक, तप अग्नि। पर किस दी अग्नि? जप दी अग्नि। जद भी कोई मनुख जप करता है उस दे अंदर तप पैदा होगा, उस दे अंदर तपश पैदा होगी, उस दे अंदर अग्नि पैदा होगी। पर यह अग्न ठंडी अग्न होंदी है, साड़दी जरूर है। किसनों साड़दी है? एक क्रोध नू साड़ के सुआ कर देंदी है, ये लोभ नूं साड़ के सुआ कर देंदी है, ਇਹ ਕਾਮ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਗਨ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਏ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਏ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਏ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਸੜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਪ ਦੀ ਅਗਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਕਾ ਲਾਲ ਜਮੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵੇ ਜਪ ਦੀ ਅਗਨ ਨਾਲ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਨਮਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਵੇ ਆਗ, ਪਾਂਚੋ ਲੜਕਾ ਜਾਰ ਕੇ ਰਹੇ ਰਾਮ ਲਿਵਲਾ। ਇਹ ਭੈੜੀ ਸੰਤਾਨ, ਇਹ ਭੈੜੀ ਔਲਾਦ ਜੋ ਮਨ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਵੇ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਕਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਔਰ ਧਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਧਨਵਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਨਿਰਧਨ ਹੈ ਸੋਈ ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਨੁੱਖ, ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮ ਧਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਧਨਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਸਥੂਲ ਧਨ ਹੈ। ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਵੈਮ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਬਿਦਰ ਨਿਰਧਨ ਹੈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਬਿਦਰ ਮੁਫਲਿਸ ਹੈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੋਲ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਦਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਝੋਗੀ ਹੈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਘਰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਿਦਰ ਰੁੱਖੀ ਮਿਸੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਘਰ ਸਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਖਿਰ ਤੂੰ ਗਵਾਲੇ ਦਾ ਗਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਬਿਦਰ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਧਨਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਝ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ ਐਸੋ ਭਾਵ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖੋ ਓਹੇ ਗਰੀਬ ਮੋਹ ਭਾਵੇ, ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭੂਲਾ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਮਰੋ ਦੂਧ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਨਿਆ, ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੇ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰੈਨ ਬਿਹਾਨੀ। ਐ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਜੂਠੇ ਰਾਗ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਸਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਬਿਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਅਲੂਣੇ ਸਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੇ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਬਿਆਨੀ, ਕਬੀਰ ਕੋ ਠਾਕਰ ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦੀ जात ना काहू की मानी। कबीर कहिंदे ने ठाकुर परम पुरखां दी दृष्टि दे च जात बेमैनी आउंदी है। हैरानगी दी गल है कि शूदरां लई धार्मिक मंदरां दे दरवाजे बंद पर शूदर भिलणी दे बेर श्री राम झूठे खांदे ने, झूठे बेर वो छकदे ने, वो शूदर है। शूदरां लई धार्मिक मंदरां दे दरवाजे बंद पर बिदर दे घर बकायदा श्री कृष्ण चले जांदे ने और बाल्मीक दा वो सन्मान करदे ने। रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बाल्मीक देख, इस तरह का उपदेश संदेश गुरदेव दी बाणी दे चों जो है मिलता है। भगत श्री कबीर ऐसे समय च होए ने आप दियां लहरां दे नाल होर अनेकां भगत उठे। रविदास, नामदेव, सदना, सैन, भीखन, आप दे विचारां दा चारों पासे प्रभाव पिया। अज भी कोई दार्शनिक गल जोड़नी होवे ते कबीर नूं अगे करना पैंदा है। आप दे कहण दा ढंग ऐसा है, किधरे आप हास रस दे च कहिंदे ने, किधरे आप रोदर रस दे च कहिंदे ने, किधरे आप शांत रस दे च कहिंदे ने, किधरे आप वीर रस दे च भी कहिंदे ने। आप दे वीर रस दे भी बचन ने, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। ये बोल भगत कबीर दे ने, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज ने, भई वो सूरमा है जो लड़े दीन के हेत, दीन गरीब, जो गरीब दी खातर लड़ता है, कमजोर दी खातर लड़ता है। सूरमा उसनु मनांगे जिदी सारी ताकत कमजोर नु बलवान करन दे खर्च हो जाए, मुफलिस नु अमीर बनाने दे खर्च हो जाए। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। गगन दमामा बाजो पर्यो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जू जन को धाओ। गगन, गगन मंडल देच, दिमाग देच, मन देच विचारां उत्पन्न होईयां ने, ख्याल उत्पन्न होए ने। ते ख्याल केड़े उत्पन्न होए ने, दीन दी बांह पकड़नी है, कमजोर दी बांह पकड़नी है। इस तरह दे आदर्शवादी उपदेश कबीर ने वंडदे आया अपना जीवन बतीत कीता, जगत दा जीवन सफल कीता।